पृष्ठ संख्या 106। पार्कर टी मून का यह कथन है कि चीन में पश्चिमी आक्रमण के दो चरण थे। पहला चरण 1840 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक, जिसमें अभी पूरे साम्राज्यवाद का विकास नहीं हुआ था, तथा 1880 ईस्वी के पश्चात, जब वास्तविक साम्राज्यवाद का विकास किया गया था। प्रथम चरण में स्थापित असमान संधियां मुक्त द्वार की नीतियों का प्रतीक थी, जो साम्राज्यवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। मुक्त व्यापार के लिए जब चीन आर्थिक रूप से खुलने लगा, तो विदेशी शक्तियों में बाजार खनन तथा रेल मार्गों के निर्माण के लिए होड़ तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसकी वजह से विदेशी प्रभाव के क्षेत्र स्थापित होने लगे। यही चरण वास्तविक साम्राज्यवाद था। इसमें व्यवसाय और वाणिज्य को मिश्रित करके वित्त साम्राज्यवाद को आरंभ किया गया। थानचुंग के अनुसार, मून ने मुक्त द्वार की नीति को साम्राज्यवाद न मानकर बड़ी गलती की, क्योंकि चीन में साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था, जब वाणिज्यिक साम्राज्यवाद असमान संधियों से विकसित हुआ, तो यह आगे चलकर 1880 ईस्वी के बाद वित्त साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। परंपरागत सामाजिक सिद्धांत, जिसमें मैरी सी राइट जैसे विद्वान शामिल हैं, के अनुसार मानते हैं कि विदेशी पूंजी के आगमन तथा निवेश से चीन में आर्थिक आधुनिकीकरण आया, जिससे पूर्व पूंजीवादी वातावरण को विकसित होने में सहायता मिली। विदेशी शक्तियों ने ही चीन में आधुनिक तकनीकों को लाकर चीन के पूंजी तथा औद्योगिकरण के विकास में सहायता प्रदान की थी। इसी के पश्चात चीन की सरकार ने औद्योगिक पूंजीवाद के विकास तथा आधिकारिक तंत्र की स्थापना की, जो उसका विस्तार कर सके। निजी व्यवसायियों ने पूंजी तथा प्रबंधकर्ताओं की आपूर्ति के द्वारा ही 1903 से 1906 ईस्वी में आर्थिक पूंजी निवेश का पुनः विकास किया। यहीं आगे चलकर पूंजीपतियों और राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास की दिशा में अग्रसर हुआ था। इस प्रकार विदेशी पूंजी जहां एक ओर विदेशी आक्रमण का प्रतीक थी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रवाद के विकास का भी प्रतीक बने। चीन के लोगों में आधुनिक उद्योगों के स्थापित करने की इच्छा का विकास हुआ। विदेशी कारखाने चीनियों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने वाली प्रशिक्षण संस्थाएं बन गई, जिन्होंने चीन के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। ऐसी स्थिति में चीन की परंपरागत अर्थव्यवस्था तथा आधुनिक प्रणाली में संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि आधुनिक इकाइयां तकनीकी ज्ञान, पूंजी, मांग व आपूर्ति एवं माल के किस्म पर भी निर्भर करती थी। विश्व अर्थव्यवस्था सिद्धांत के वर्ग, द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्योरीज स्कूल के अनुसार वित्त साम्राज्यवाद का सार्वभौमिक स्वरूप था। एक H.W. सिंगर, गुन्नार मेडल, फ्रांसिस मोल्डर तथा आंद्रे गुंटर फ्रैंक जैसे विद्वानों के अनुसार पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक दबाव के द्वारा अपना आर्थिक आश्रित इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दिया। वे कृषि तथा कच्चे माल का आयात करके वह उत्पादित माल को अपने क्षेत्र में तैयार करके उसे ऊंची कीमतों पर गैर पश्चिमी राष्ट्रों में बेच देते थे। साथ ही आंतरिक औद्योगिकीकरण को विकसित होने से रोकने के लिए अनेकों पाबंदियां लगाई जाती थी। फ्रांसिस मोल्डर का कथन है कि चीनी ब्रिटिश व्यापार को परिवर्तित करने के लिए तथा मुनाफा कमाने के लिए ब्रिटेन ने चीन और भारत के व्यापार को एक दूसरे से बांध दिया। भारत से अफीम का निर्यात चीन को व चीन से चाय का निर्यात ब्रिटेन को किया जाता था, जिसमें ब्रिटेन को पूंजी निवेश करने की आवश्यकता कतई नहीं थी और व्यापार संतुलन केवल उसी को मुनाफा दिलवाता था। धीरे धीरे चीन के कई शहर विदेशी शक्तियों की व्यापारिक व्यवसायिक, राजनैतिक तथा सैन्य शक्ति का केंद्र बन गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए यही विदेशी शक्तियां चीन के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करके उन पर आर्थिक तथा राजनैतिक पाबंदियां लगाने लगी। इसके पश्चात चीन की प्रभुसत्ता को समाप्त करके जहाजरानी, उत्पादकता, खनन, धर्म तथा बैंकिंग कंपनियों द्वारा चीन के आर्थिक शोषण तथा वित्त साम्राज्यवाद की नींव रखी गई थी। आंद्रे गुंटर फ्रैंक का मानना है कि चीन में विदेशी वित्त साम्राज्यवाद के उदय के लिए चीनी व्यापार का उपयोग किया गया था। चीन के बाहर तथा चीन के अंदर उसे विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रखने के लिए चीन की ही पूंजी का उपयोग में किया गया था। इससे चीन में नए वर्गों का उदय भी हुआ जिन्होंने धीरे धीरे चीन के आधुनिकीकरण में बाधाएं पहुंचाई। यह नए वर्ग थे अधिकारी कंप्रेदोर बुर्जुआ वर्ग, जो विदेशी दलालों के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार इतिहासकारों के दो विभिन्न वर्ग उभर कर आते हैं। कुछ विदेशी विद्वानों की दृष्टि में वित्त साम्राज्यवाद के द्वारा चीन में बेहतर तकनीक अधिकारी तंत्र तथा वित्तीय संस्थाओं का निर्माण हुआ था। अन्य विद्वानों की दृष्टि में उसने चीन की अर्थव्यवस्था को असंतुलित करके उसे अस्थिर, शोषित और विदेशी शक्तियों पर आश्रित बना दिया था। चीन के साथ पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक संपर्क आर्थिक संघर्ष का कारण बना, क्योंकि विदेशी शक्तियों की नीतियां चीन के आर्थिक विकास में अवरोधक का काम कर रही थी। यह अवरोध दो प्रकार का था। पहले व्यापारिक गतिविधियों के जरिए हथकरघा उद्योगों को नष्ट किया गया, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया तथा मात्र विदेशियों हेतु लाभप्रद संतुलित व्यापार विकसित किया गया। इसके पश्चात पूंजीवादी साधनों में निवेश करके चीन की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया गया और विदेशी शक्तियों का अर्ध उपनिवेश बनाकर उसके धन का दोहन किया गया। चीन को आधुनिक बनाने का उद्देश्य किसी भी विदेशी शक्ति का नहीं था, बल्कि वह तो केवल उसके द्वारा अपना आर्थिक स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। वित्त साम्राज्यवाद किसी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक ऐसा अप्रत्यक्ष माध्यम है जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि चीन में वित्त साम्राज्यवाद की शुरुआत 1895 ईस्वी के बाद से मानी जाती है, लेकिन इसके प्रमुख तत्वों का विकास अफीम युद्धों से ही शुरू हो चुका था। आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टि में इसका सही रूप उस समय उभर कर आया जब छिंग सरकार ने बक्सर विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए थे। चीन में वित्त साम्राज्यवाद को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण की शुरुआत 1895 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत बक्सर हर्जाने को भरने के लिए छिंग सरकार ने विदेशी कंपनियों से ऋण लेने के बदले जमानत के रूप में विदेशी सीमा शुल्क के अधिकार उन्हें सौंप दिए थे। इसके अतिरिक्त विदेशी ताकतों के दबाव में आकर चीनी सरकार को अपने प्रांतीय करों को गिरवी रखना पड़ा तथा नमक कर प्रणाली को पुनर्गठित करके उसे भी जमानत के रूप में विदेशी कंपनियों को सौंप दिया गया। इस प्रकार प्रथम चरण में विदेशी वित्त और कूटनीति के प्रयोग द्वारा चीन पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। दूसरा चरण 1908 ईस्वी के बाद आरंभ होता है, जब विदेशी शक्तियों ने क्षेत्रीय विस्तार, कर नियंत्रण तथा व्यापार में अधिक मुनाफा प्राप्त करने के स्थान पर अपना ध्यान रेल मार्गों, खनन अधिकारों और विदेशी पूंजी निवेश के लिए देशत्तर अधिकार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी तथा प्रभाव क्षेत्रों, स्पेयर्स ऑफ इंटरेस्ट और अपने प्रभावों को जमाने का प्रयत्न आरंभ किया। इस नीति के अंतर्गत विदेशी कूटनीतिज्ञों ने चीन की सरकार पर दबाव डालकर खनन, रेलमार्ग और बैंक संस्थाओं के निर्माण के लिए विशेष रियायत प्राप्त की। इसके पश्चात चीन को आधुनिक राष्ट्र बनाने के बहाने उसे वित्त साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक अर्ध औपनिवेशिक आर्थिक उपनिवेश के रूप में परिवर्तित किया तथा उसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बदल दिया जो कि कच्चे माल का निर्यात तथा विदेशी पूंजी तथा उत्पादित माल का आयात करने पर मजबूर हुआ। रियायतें प्राप्त करने की इस होड़ को इतिहासकार एक बड़े तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने की प्रक्रिया जैसे मानते हैं। कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलॉन, इसमें प्रत्येक विदेशी शक्ति अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के आधार पर चीन से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही वित्त साम्राज्यवाद का काल कहा जाता है।